समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश विदेश के समाचार आपको बताएंगे, क्षेत्रीय संवाददाताओं से रूबरू होंगे। इसके अलावा आर्थिक जगत और खेल जगत पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत कुछ रहेगा आधे घंटे के इस कार्यक्रम में। इस अंक में मैं हूं प्रियंका अरोड़ा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। हेलो अभिषेक।
हेलो प्रियंका। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट प्रियंका अरोरा। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
बिल्कुल। केंद्र में सरकार गठन से पहले राजनीतिक बातचीत तेज, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की।
सुप्रीम कोर्ट आज हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू रिलीज 137 क्यूसेक्स ऑफ सरप्लस वाटर टू दिल्ली।
मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में अगले 6 दिनों के दौरान व्यापक बारिश की संभावना व्यक्त की।
इन फ्रेंच ओपन टेनिस सेमीफाइनल्स बिटवीन इंडो ऑस्ट्रेलियन ड्यू ऑफ रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एब्डन अंडरवे इन पेरिस।
और कोलकाता में फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफायर मैच में आज शाम भारत का सामना कुवैत से।
And now, Priyanka, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about the rains. And Priyanka, someone very rightly said that rain is grace, rain is the sky descending to the earth. Without rain, there would be no life. And with the rains comes the pitter-patter of raindrops and the cool, refreshing air. It's time for cozy days in, watching the rain stream down the window, or maybe even splashing through puddles in joyful abandon.
Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling, so I just did need some talking to the sun.
Speaking of rains, Priyanka, some more beautiful thoughts on rain for our listeners. A guarantee of rain always comes with a promise of sun in weather and in life. And another beautiful thought, Priyanka, rain reminds us that we cannot stop what can't be stopped. The world will turn, the seasons change, the rain falls, and life goes on.
They send to meet me, won't defeat me. It won't be
अभिषेक, हमारे आज इस अंक में बारिश की बूंदें इसलिए पड़ रही हैं क्योंकि कल दिल्ली में बारिश पड़ी और लोगों को इतनी भीषण गर्मी से, जो 50 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच गया था दिल्ली में तापमान, उससे राहत मिली। और केरल में चूंकि मॉनसून दस्तक दे चुका है और इस महीने के अंत तक दिल्ली में भी संभावना है कि मॉनसून आ जाएगा, कल प्री मॉनसून बारिश हुई। और आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून है जो मध्य अरब सागर और कर्नाटक के शेष हिस्सों, दक्षिण महाराष्ट्र, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश दक्षिण के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए उसकी परिस्थितियां अनुकूल हैं। तो कल दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी और हीटवेव का असर कम हुआ। बीते दिनों तापमान 50 डिग्री तक पहुंच गया था और कल की जो बारिश हुई कल इलाकों में, तो उसकी वजह से गर्मी से दिल्ली वासियों को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए राहत काफी नहीं है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में यहां का तापमान आसमान छू गया था, जिसकी वजह से जीना मुहाल हो गया था।
Yes, Priyanka, you were saying that it was raining in Delhi yesterday, and we all know that Delhi is reeling under severe water scarcity. So what is the main purpose of rain? Well, it is a primary source of water for all of us. It helps maintain the water cycle and provides fresh water for everyone. However, rain does not only provide us with water, it also has a very calming and refreshing effect on us. And while most people enjoy the rainy season sitting down with a cup of tea, biting into pakoras and samosas and watching the rain, it is also unfortunately true that the rainy season brings with it a host of health problems which test the body's immune system. There are many illnesses, allergies, etc., which can make a person feel under the weather, which is why it becomes important to combat it with healthy, home-cooked foods, fresh fruits and vegetables.
बिल्कुल, भीषण गर्मी में क्या एहतियात बरतने चाहिए, इस पर हमने बहुत बातचीत की आपने कार्यक्रम परिक्रमा में, लेकिन अब जैसे चूंकि बारिश दस्तक दे रही है, मॉनसून आ रहा है, तो उस दौरान जैसा सही कहा बिल्कुल अभिषेक ने कि जल संरक्षण सबसे इम्पोर्टेंट है, और जैसे हमें इतनी कमी हो रही है दिल्ली में और कई और शहरों में भी, देश के कई हिस्सों में भी हमें जो है पानी की कमी देख रहे हैं, तो उसके लिए जैसे अब तैयार रहना चाहिए हमें कि जल संरक्षण कैसे करना है, पानी की बर्बादी नहीं करनी है, और बारिश के समय जहां तक मुमकिन हो सके घर का खाना, फ्रेश खाना जरूर खाना है। बहरहाल फिर पहुंचते हैं कि जो आईएमडी आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस का अनुमान व्यक्त कर चुका है, और आज भी शायद कुछ इलाकों में बादल छाए रहेंगे और तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी भी पड़ सकती है। एक खास रिपोर्ट है हमारे संवाददाता रहीसुद्दीन की, इस बारे में आइए सुनते हैं।
मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी ऐसी स्थिति होने की संभावना है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उड़ीसा में भी भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पर मौसम विभाग ने कहा है कि मध्य अरब सागर, कर्नाटक, दक्षिण महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ हिस्सों के साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण छत्तीसगढ़ और दक्षिण ओडिशा, पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में पहुंचेगा। इस बीच कल रात दिल्ली में भी ओलावृष्टि के साथ मध्यम बारिश दर्ज की गई। रही सुदन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
और आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब जैसे बारिश हो रही है देश के कई हिस्सों में, पश्चिम बंगाल में भी हो रही है, और असम में पिछले 24 घंटों में मौसम बेहतर होने से जो बाढ़ की स्थिति थी, जब हमने देखा था चक्रवात रेवल के कारण काफी नुकसान हुआ, तो उसमें सुधार हुआ है और इस बीच बाढ़ पीड़ितों की संख्या में कमी आई है। हालांकि अब भी 2,40,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं और बाढ़ से कछार जिले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की संख्या 25 हो गई है। असम में 375 गांवों के 22,000 से ज्यादा लोग फिलहाल 112 राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। तो बारिश आती है, कईयों के चेहरों पर मुस्कान आती है और कहीं ये जो हमेशा की तरह आपदा की स्थिति पैदा हो जाती है। पर हम आपको
लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द रेन, प्रियंका, सिंस वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू रेन इन दिस स्वेल्टरिंग हीट ऑफ दिल्ली। Let's all talk about some outdoor activities you can indulge in on a rainy day. Go for a rain hike, make rain music, splash in puddles, and build a dam. Now, talking about some indoor activities that we can all indulge in, have a movie marathon, camp indoors, make a snack, have a treasure hunt, and play board games. Well, there are lots of ways to enjoy the rains, isn't it?
बिल्कुल अभिषेक, भीषण गर्मी से इतना ऊब चुके हैं आप, ऐसा लग रहा है तो इन्होंने पूरा एक प्लान बना लिया है कि जब बारिश आएगी तो मुझे क्या 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 करना है।
Why not?
और फिलहाल अब इस वक्त मुझे हरिवंश राय बच्चन, जो महान रचयिता, उनकी भी पंक्तियां याद आ रही हैं कि बादल घिर आए हैं, गीत की बेल आई, आज गगन की सूनी छाती भावों से भर आई, चपला के पांवों की आहट आज पवन ने पाई, डोल रहे हैं बोल न जिनके मुख में विधि ने डाले, बादल घेर आए, गीत की बेला आई। तो इंतजार है दिल्ली वासियों को झमाझम बारिश का, और साथ में अपना कर्तव्य जो है जल संरक्षण का, उसको करना न भूलें। और अब समय अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जुड़ने का। अभिषेक, जो इस बार इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, हाहाकार मची इस बार भीषण गर्मी से, तो उसका एक कारण जलवायु परिवर्तन है और पर्यावरण का जो हम अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं अपनी जो इच्छाओं के लिए, वो उसका नतीजा है। और कल जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, उसमें इन्हीं सब कारकों पर, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा की गई और अरुणाचल प्रदेश में भी कल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और कई कार्यक्रम इसको लेकर आयोजित हुए। तो इस बारे में खास रिपोर्ट है हमारे संवाददाता राकेश डोले की, ईटानगर से, आइए सुनते हैं।
As the effect of climate change become increasingly apparent, this World Environment Day, conscious people in Arunachal Pradesh has recognized the urgency of mitigating its impact by organizing awareness campaigns, tree plantation drives, and sustainable development initiatives. These stakeholders aim to enhance its resilience to climate-related challenges. This day serves as a platform to rally support for those endeavors and foster a culture of environmental stewardship among its citizens. Arunachal Pradesh Governor Lieutenant General K.T. Panayak retired, participating in a program held at Rajbhavan in Itanagar, said that the people of Arunachal Pradesh are always been connected to nature and they have maintained a balance between development and conservation. He appealed to the people to continue their endeavor.
जो हमारा पर्यावरण दिन है उसके लिए मैं चाहूंगा कि हम सब मिलके अपनी तरफ से कोशिश करें कि अपने हरित प्राण को जो है और भी हम हरित बनाएं, उसका संरक्षण करें, उसकी रक्षा करें और उसकी देखभाल करें, क्योंकि इसी जनजीवन से हमें लाभ होता है। और अगर मैं सही मानूं तो जितने भी जनजातियां अरुणाचल में हैं वो सभी अपने जाति के जो फेस्टिवल्स मनाते हैं वो हार्वेस्टिंग यानी फसल और पर्यावरण इन दोनों से कनेक्टेड है। तो इसका महत्व हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए बहुत बड़ा है और इसका संरक्षण करना हमारा सबका काम है।
फॉर परिक्रमा, दिस इज राकेश डोले, आकाशवाणी न्यूज, ईटानगर।
अभिषेक, पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखेंगे तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और हमारे जो आसपास जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनके लिए भी अच्छा है। और क्योंकि सारे अधिकतर जो हम देखते हैं जो पशु हैं वो उनका जो निवास है वो जंगलों में रहता है। और अगर हम हाथी की ही बात करें जिसे हमारे देश में राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया जा चुका है, ओडिशा में उनकी संख्या बढ़ गई है।
यस, एंड ओडिशा द नंबर ऑफ एलिफेंट्स हैज गॉन अप बाय 122 from 1976 in 2017 to 2098 now, and the elephants spread over 38 forest divisions, include 313 adult tuskers, 12 adult makhnas, 748 adult females, 148 sub-adult males, 282 sub-adult females, 209 juveniles, and 385 calves. And this census is the outcome of the just concluded elephant census in the state following traditional methods of counting by direct sighting. And a total of 1,214 machans were constructed in 1,905 census units across the state. And more than 5,700 personnel were engaged in the exercise. So we have more from our Odisha correspondent Prakash Das on this.
The population of elephants in Odisha has gone up by 122 in 7 years. According to the latest elephant census report, the three elephant reserves in the state, Mahanadi, Mayurbhanj and Sambalpur, have 584 elephants, which is around 28% of the total jumbo population in the state. Dhenkanal division has the highest 239 elephants, followed by Athagad 178, Satukusia Wildlife 138, Keonzar 135, Bonai 121, Angul 119, Baripada 105, Simlipal North 103 and Simlipal South 101. A significant increase in the number of elephants has been recorded in the divisions of Angul, Athagad, Dhenkanal, Baripada, Chandaka, Khordha, Banai and Keonzar. However, there has been a decline in the jumbo count in Simlipal North and South, besides Balasar Wildlife, Rairangpur, Balangir, Parlakhemdi and a few other divisions. This may be due to the overall change in movement patterns of elephants in the state for their foraging habitat and changing in land use pattern. The census report further said, Odisha has a large, well-established elephant population with a stable age distribution and growth rate of about 3%. The elephant deaths during the last 5 years have been within the range of 3% to 4.5% of the total population. The least number of 66 jumbo deaths were reported in 2023-2024 financial year. The census also estimated that about 2,100 to 2,200 elephants are using the forests of Odisha during a year, as there is interstate migration of jumbos from Jharkhand, Chhattisgarh and West Bengal. Prakash Das, Akashwani News,
Bhubaneswar. Haji Hanifa Jan receives hero's welcome after winning Ladakh parliamentary seat in Ladakh following his triumphant victory in the Ladakh parliamentary constituency. Independent candidate Haji Hanifa Jan made his way from Leh to Kargil, receiving an enthusiastic reception at every stop along the way. Let's hear more from a Kargil correspondent, Anayat Ali.
Haji Anifa Jan, who was greeted by thousands of supporters en route to Kargil, key locations such as Khalsi, Bodkharbu, Khangral, Wakha, Mulbeg and Pashkyum, witnessed jubilant crowds welcoming him with traditional khataks, garlanding him with white and colorful scarves in a show of respect and celebration. Upon his arrival in Kargil, Haji Anifa Jan addressed a massive public gathering at Husseini Park. In his speech, he thanked the people of Ladakh, particularly the residents of Kargil, for their overwhelming support and trust. He further said that the support he received was beyond his expectation. Prominent leaders of Ladakh Democratic Alliance, led by senior leader Haji Asghar Ali Karbalai and Kamar Ali Akhon, along with CC LSDC Kargil Dr. Jafar Akhon, former minister and CC Firoz Ahmad Khan, Nasir Munshi, and various religious and social leaders also interacted with the people. They expressed their gratitude to the populace for demonstrating the strength of unity in supporting Haji Anifa Jan. The victory of Haji Anifa Jan, marked by such a grand welcome, signifies a momentous change in Ladakh's political landscape as he prepares to represent the constituency in the Lok Sabha. For Parikrama, this is Anayat Ali from Kargil Union Territory of Ladakh.
बिल्कुल लद्दाख की एकमात्र लोकसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे और इस पर कांग्रेस और भाजपा दोनों के उम्मीदवार खड़े थे और दोनों हार गए. मतलब हमारे देश एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और इसका जो देखने मतलब इसका सबूत यही है कि निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया होती है. क्योंकि अगर आप तेलंगाना में देखें तो 1 लाख से अधिक मतदाताओं ने वहां नोटा का इस्तेमाल किया. नोटा यानी नन ऑफ द अबव, मतलब उनमें से जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए थे उनमें से किसी भी उम्मीदवार को उन लोगों ने वोट नहीं डाला. तो इतना बड़ा प्रमाण है इस बात का कि हमारा देश निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया आयोजित करता है.
एंड इजंट इट अमेजिंग प्रियंका दैट वी हैव दिस एक्चुअली हैव दिस ऑप्शन ऑफ नोटा.
जी,
इफ यू डोंट वांट टू वोट फॉर एनी ऑफ द given candidates, you can always press the nota. This is, I think, is an amazing option for the voters.
और एक ये सीख भी है जो भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं कि उन्हें एक सबक है, एक सीख है अगले जो चुनाव के लिए कि उन्हें किस तरह से आगे बढ़ना है. तो इस बारे में खास रिपोर्ट है हमारी संवाददाता लक्ष्मी की, सुनते हैं.
Apart from the winners and losers of the Lok Sabha results announced recently, results of Nota option also evoked a lot of interest among people in Telangana. As per final reports from the Election Commission of India, the number of Nota votes secured across the state was over 1,04,000 votes, that is around 0.48% of total polled votes. It also shows what the voters want to say, that they are committed voters but they are unhappy with the candidates who are contesting the polls. About 1,04,000 voters expressed their dissatisfaction against the contesting candidates by pressing the Nota option. Malkasgiri Lok Sabha constituency saw the highest 13,366 voters choosing Nota option. Malkasgiri BJP candidate Etala Rajender won by over 3 lakh votes majority. It was followed by Adilabad with over 11,700 votes and Warangal over 8,300 votes. It may be recalled that a total of 525 candidates contested for the 17 Lok Sabha constituency held in the state on May 13th of this year. Interestingly, Hyderabad witnessed the lowest of Nota votes at over 2,900. This is marginally less compared to the 2019 polls, a vote share of little over 1%. Of the 17 Lok Sabha seats, the Congress and BJP candidates emerged victorious by winning 8 seats each, while AIMIM secured one Hyderabad Lok Sabha seat and BRS drew a blank. Lakshmi for Parikrama, Hyderabad.
Now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
Oru harira kavitha adara valira paadi vande maadharam aarudula mulligal adara vettu paadi vande maadharam.
In today's episode, we remember nationalist Annie Mascarene, who was born on the 6th of June 1902 at Trivandrum. Along with Akamma Cherian and Pattam Thanu Pillai, Mascarene was one of the leaders of the movements for independence and integration of the princely states with the Indian Union.
Bharatame bhagyame naan piranna mannu nindedallo ende chorail
In February 1938, when the political party Travancore State Congress was formed to establish a responsible government for Travancore, Mascarene became one of the first women to join and was appointed to the working committee. In 1938 and 1939, Mascarene served on the Economic Development Board of the Travancore government. In 1942, Mascarene joined the Quit India movement and 2 years later was elected as secretary of the Travancore State Congress. Her activism led to numerous arrests and imprisonments for various periods.
She entered the princely state of Travancore and Cochin Union in the Constituent Assembly. In the assembly, she spoke on the issue of federalism. She was a member of the Travancore Cochin Legislative Assembly between 1948 and 1952, where she served briefly as a minister in charge of health and power. Mascarene was elected to the first Lok Sabha as an independent candidate. She was the first woman from Kerala to have been elected to the Lok Sabha.
Annie Mascarene, who died on the 19th of July 1963, worked for the betterment of people till the very end.
We also remember nationalist Hanumanthappa Narasimhaya, who was born on the 6th of June 1920 in Hosur, Karnataka. The young Narasimhaya joined the National High School in Bengaluru in 1935. The school became a platform for his interaction with Mahatma Gandhi the very next year when the latter visited it, and young Narasimhaya was the translator for his speech. He became a lifelong Gandhian and was jailed during the Quit India movement for 9 months.
After independence, Narasimhaya joined National College Bengaluru as a faculty member. He went on to do his PhD in nuclear physics at the Ohio State University, but remained a strong votary of non-violence and peace. After coming back to India, Narasimhaya became the principal of the National College Baswanagudi in 1961. Later, he became the Vice-Chancellor of Bangalore University in 1972. Narasimhaya believed education and rational thinking were the means to uplift the masses. He started 5 schools and colleges in remote villages of Kolar district.
Narasimhaya was awarded the Padma Bhushan by the Government of India in 1985. He died in 2005 and was cremated at Hosur with state honors.
O amar desher mati tomar pore thakai matha.
We also remember revolutionary freedom fighter Ashok Nandi, who died on the 6th of June 1909. Born in 1888, Nandi was a member of the revolutionary group in Komila, now in Bangladesh. He took an active part in the agitation against the partition of Bengal in 1905. Nandi was arrested in 1908 for complicity in the Alipur bomb case and died while imprisoned in the Presidency Jail on the 6th of June 1909. We salute the great martyr.
In business news today, India's equity benchmark indices closed nearly 1% higher today. The Sensex gained 692 points, or 0.93%, to close at 75,075. Nifty advanced 201 points, or 0.89%, to settle at 22,821. In the global crude market, Brent crude is trading at $78.74 per barrel. WTI crude is trading at $74.46 per barrel when reports last came in. And in the global commodity exchange for 5th June 2024 contract, gold is trading at 72,775 rupees per 10 grams. Silver for 5th July 2024 contract is trading at 91,480 rupees per kilogram when reports last came in.
और अब खेल मैदान की हलचल. न्यूयॉर्क में आईसीसी टी20 विश्व कप में भारत ने पहले मैच में आयरलैंड को 8 विकेट से हरा दिया. भारत का अगला मैच रविवार को पाकिस्तान से होगा. उधर भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री आज कोलकाता में कुवैत के साथ महत्वपूर्ण फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफायर मैच में आखिरी बार राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व करेंगे. और अब जानी मानी हस्तियों को याद करते हैं. मानव के उत्थान के लिए साहित्य बड़ा सशक्त माध्यम है. वे मनुष्य को पशु से देवता बनाता है. मानवोत्ति के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म तीन मार्ग बताए गए हैं. उनके अलावा चौथा साहित्य मार्ग भी है. साहित्य का मार्ग सर्वोत्तम मार्ग है. ये विचार ज्ञानपीठ से सम्मानित कन्नड़ के महान साहित्यकार मास्ती वेंकटेश अयंगार के हैं. आज उनकी जयंती है. गहन मानवतावाद के पोषक और मानव मात्र में अटूट आस्था रखने वाले डॉ मास्ती वेंकटेश अयंगार ने कन्नड़ कहानी को उल्लेखनीय प्रतिष्ठा दी. उनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो उसमें मलर, मुकन, मक्कलु, मानवी शामिल हैं. उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था.
विलियम एवरेट प्रेस्टन पास्ड ऑन दिस डे इन 2006. ही वाज एन अमेरिकन कीबोर्डिस्ट, सिंगर एंड सॉन्ग राइटर हुज वर्क इन कंपस्ड R&B, रॉक, सोल, फंक एंड गॉस्पल. प्रेस्टन वाज अ टॉप सेशन कीबोर्डिस्ट इन द 1960s. लेट्स लिसन इन टू हिज हिट ट्रैक द लक ऑफ द आयरिश and it's from his album, Sometime in New York City.
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध फिल्म निर्माता डी रामानायडू का जन्म भी आज ही की तारीख को हुआ था. आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में जन्मे डी रामानायडू को सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए जाना जाता है और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है क्योंकि उन्होंने लगभग 12 या 13 भाषाओं में फिल्में बनाई, 150 से भी ज्यादा. जैसे तेलुगु में प्रेम नगर फिल्म बनाई और उसी का रीमेक किया हिन्दी में प्रेम नगर के नाम से ही. और इस फिल्म के गीत भी काफी लोकप्रिय हुए. उनकी पहली फिल्म तेलुगु थी रामदू भीमदू. इसमें एनटी रामाराव थे और उनकी भी ये पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने डबल रोल किया. उसका एक खूबसूरत नगमा आपको सुनाते हैं. याद है दिलीप कुमार की राम और शाम, वो इसी फिल्म का रीमेक थी.
स्टीवन सीरोवाई वॉज बॉर्न ऑन दिस डे इन 1960. ही इज एन अमेरिकन गिटारिस्ट, सॉन्ग राइटर एंड प्रोड्यूसर, 3-time ग्रैमी अवार्ड विनर एंड 15-time नॉमिनी. वाई स्टार्टेड हिज म्यूजिक करियर इन 1978 एट द एज ऑफ 18 एज अ ट्रांसक्रिप्शनिस्ट फॉर फ्रैंक ज़ैप्पा एंड प्लेड इन ज़ैप्पा एंड बैंड फ्रॉम 1980 टू 1983. ही एम्बार्क्ड ऑन अ सोलो करियर 1983 एंड हैज रिलीज्ड 8 सोलो एल्बम्स. लेट्स लिसन इन टू हिज हिट ट्रैक लोटस फीट. And it's from the album Real Illusions, Reflections.
और मशहूर गीतकार राजेंद्र कृष्ण की आज जयंती है. हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार थे. हर रंग के गीत लिखे, देशभक्ति, धार्मिक, रोमानियत भरे. बेशक उनका नाम इतना प्रचलित न हुआ हो, लेकिन उनके लिखे गीत या कहें हर एक गीत मोती सा है. और उनके द्वारा लिखा गया फिल्म छाया का ये खूबसूरत गीत जो है आपको सुनाते हैं.
इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा.
राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखा गया ये गीत आशा पारेख और सुनील दत्त पर फिल्माया गया था. और आपको बता दें कि सुनील दत्त का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था.
तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं तुम मुझे.
So with that, it's time to wind up this edition of Parikrama. Thank you so much for being with us. Till the next time, this is Priyanka Arora and me Abhishek Mukhopadhyay signing off. Bye and
Namaskar. Namaskar.